आगे सबक देखिए भाई, वलौ काला अंति तालिकु वाहिदतन औला फलैस बिशैइन काला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाकदा ज़ुकिरा फिल जामिअस सगीर मिन गैरि खिलाफिन وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى آخرا وعلى قول محمد رحمه الله تعالى وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أولا تطلق واحدة رجعية بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی طالقم مالم اطلق کی انتی طالقن، یعنی پہلے شرط ذکر کی اور اس کے بعد پھر فوراً طلاق بھی دے دی. کیا کہا؟ انتی طالقم مالم اطلق کی، کہ تجھے طلاق ہے جس وقت میں تجھے طلاق نہ دوں، اور اس کے بعد خاموش ہونے کے بجائے ساتھ ہی اس نے طلاق بھی دے دی. تو جب اس نے طلاق دے دی تو وہ طلاق جو پہلے اس نے معلق کی تھی وہ واقع نہیں ہوگی. تو ہمارے ائمہ کے نزدیک صرف دوسری طلاق واقع ہو جائے گی اور معلق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی شرط پوری نہیں. شرط کیا تھی؟ اگر میں تجھے طلاق نہ دوں تو پھر تجھے طلاق ہے، اور اس نے تو طلاق دے دی لہذا اس کی شرط پوری نہیں. جب شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں ہوگا بھائی. جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں دو طلاقیں ہو جائیں گی. وجہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ تعلیق کے بعد خاوند نے جب آگے انتی طالقن کہنا شروع کیا تو انتی طالقن کے پورا کرتے کرتے کچھ وقت تو گزر گیا، تو تھوڑا سا وقت پایا گیا جس کے اندر اس نے ابھی طلاق نہیں دی، تو لہذا وہ پہلی والی کی شرط بھی پوری ہو گئی، وہ بھی واقع ہو جائے گی، اور پھر یہ والی پوری ہو جائے گی تو یہ بھی واقع ہو جائے گی، تو دو طلاقیں ہو جائیں گی. تو اس کا جواب بھی صاحب ہدایہ نے ذکر فرمایا تھا کہ کوئی شخص جب قسم کھاتا ہے تو اس کا مقصد قسم کو پورا کرنا ہوتا ہے، لہذا کم از کم قسم کھانے والے کو اتنا وقت ملنا چاہیے جس کے اندر وہ اپنی قسم پوری کر سکے. تو اتنا وقت جو ہے وہ دلالت حال سے مستثنا ہو گیا. کیوں؟ دلالت حال کیا؟ ایک شخص جب ایک چیز پر قسم کھا رہا ہے تو یہ قسم بتلا رہی ہے کہ اس کا ارادہ کیا ہے، اس قسم کو پورا کرنے کا ہے، تو یہ دلالت حال کی وجہ سے اس کے لیے اتنا وقت مستثنا ہو جائے گا. تو دلالت حال کی وجہ سے کچھ وقت مستثنا ہوگا جس میں وہ اپنی قسم پوری کر سکے. یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے کہ واللہ میں اس گھر کے اندر نہیں رہوں گا، اور پھر ساتھ ہی اس نے اپنا سامان اٹھانا شروع کر دیا. تو اب دیکھو کچھ وقت تو وہ رہا گھر کے اندر، سامان اٹھا رہا ہے اور اس سامان لے کر نکل رہا ہے، لیکن اتنا وقت مستثنا ہے جس میں وہ اپنی قسم پوری کر سکے. یا اسی طرح ایک شخص سوار ہے اور کہتا ہے واللہ میں اس سواری پر سوار نہیں ہوں گا، اور یہ کہتے ہی اس نے اترنا شروع کر دیا، پھر بھی چند لمحے تو گزر گئے اس کے سواری پر، لیکن اتنا وقت مستثنا ہے. یا ایک شخص نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کہتا ہے واللہ میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گا، اور ساتھ ہی اس نے وہ کپڑے اتارنا شروع کر دیے، تو دیکھو اس صورت میں یہ حانث نہیں ہوں گے یہ تینوں افراد، کیونکہ اتنا وقت تو ملنا چاہیے جس میں وہ اپنی قسم پوری کر سکے. پھر یہاں پر میں نے اشکال ذکر کیا کہ بھئی یہاں تو قسم کی بات کر رہے ہیں شرح کے اندر صاحب ہدایہ، اور متن کے اندر تو کوئی قسم کی بات نہیں آئی. متن میں تو انت طالقن ما لم اطلق کی، وہاں تو تعلیق ہو رہی تھی، اور شرح کے اندر صاحب ہدایہ یمین ذکر فرما رہے ہیں. تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تعلیق کو بھی شرعن یمین کہتے ہیں، تعلیق کو بھی شرعن یمین کہتے ہیں، اس لیے کیونکہ جب کسی کام کے کرنے کی قسم اٹھاتا ہے معلوم ہو وہ اپنی ذات کو ابھار رہا ہے کہ یہ کام ضرور کرنا پڑے گا. مثلا ایک شخص کہتا ہے واللہ میں لاہور ضرور جاؤں گا، تو دیکھو یہ قسم کھا کر گویا وہ اپنے نفس کو ابھار رہا ہے کہ اب تو میں نے قسم کھا لی ہے، اب تو یہ کام کرنا ہی پڑے گا. تو قسم کے ذریعے کسی کام کے کرنے پر ابھارا جاتا ہے، اور بعض اوقات قسم کے ذریعے کسی کام سے روکنا مقصود ہوتا ہے. مثلا کوئی شخص کہتا ہے واللہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو یہ قسم کے ساتھ نفی کر رہا ہے، مقصد یہ ہے اپنے نفس کو روک رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اب تو میں قسم کھا چکا ہوں، اب یہ قسم پوری کرنا پڑے گی. تو قسم کے ذریعے کسی کام کے کرنے پر ابھارا جاتا ہے یا کسی کام سے روکنے پر ابھارا جاتا ہے، اور تعلیق کے اندر بھی یہی مقصود ہوتا ہے. मसलन एक शख्स अपनी बीवी से कहता है इन दखलती दारफ आंती तालिकुन, अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, तो देखो मालूम हुआ ये उसको उस घर में जाने से रोकना चाहता है। तो ये तो था एक काम से रोकने के लिए ताली की, और कभी किसी काम के करने के लिए ताली की जाती है। खामन बीवी से कहता है अगर तू उस घर में न गई तो तुझे तलाक है, तो देखो मालूम हो उसके घर में जाने पर वो उसको उभार रहा है भाई। तो जैसे कसम किसी काम पर उभारने के लिए या किसी काम से रोकने के लिए खाई जाती है, इसी तरह तालीक भी किसी काम पर उभारने के लिए या किसी काम से रोकने के लिए की जाती है। तो इसलिए फिका के अंदर तालीक को भी यमीन कहते हैं। और मैंने आपको यह भी बतलाया था अगर मुतलक तालीक है जिसके अंदर किसी काम के करने पर उभारना ना हो या रोकना ना हो तो उसको यमीन नहीं कहते। मसलन एक शख्स अपनी बीवी से कहता है अंति तालिकुन इदा जा अल गद, जब कल का दिन आ जाए तो तुम्हें तलाक है। अब देखो यहां किसी काम से रोकना नहीं, अब हर हाल में अगले दिन तलाक होगी, तो न किसी काम पर उभारना यहां मकसूद है और न किसी काम से रोकना मकसूद है, तो इस किस्म की तालीक उसको यमीन नहीं कहते भाई। तो लिहाजा इसलिए मतन में जो तालीक थी उसको भी यमीन ही कहेंगे। तो साहिब हिदाया ने भी यमीन को जिक्र किया शरा के अंदर भाई। उसके बाद साहिब हिदाया ने दूसरा मसला जिक्र फरमाया कि किसी शख्स ने अपनी बीवी से कहा यौम अतज़व्वजू की फअंती तालिकुन, जिस दिन मैं तुझसे निकाह करूं तो तुझे तलाक है। तो इस सूरत में ये यौम का लफ्ज मुतलके वक्त के माना में हो गए, यानी जिस वक्त भी मैं तुमसे निकाह करूं तुम्हें तलाक है, तो वो रात को भी निकाह करेगा तो तलाक हो जाएगी। वजह यह कि ये जो यौम का लफ्ज है ये नहार के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी सुबह से शाम तक के वक्त के लिए, और यौम का लफ्ज मुतलके वक्त के लिए भी इस्तेमाल होता है। और मैंने जाब्ता बतलाया था कि अगर यौम जो है वो मफूल फी बन रहा हो यानी जर्फ बन रहा हो फेल के लिए, तो उस फेल को देखा जाएगा कि वो फेल मुमतद है या गैर मुमतद। बाज फेल मुमतद होते हैं, उनमें इम्तिदाद होता है जहां मुद्दत बयान की जा सकती है, जैसे चलना सिर तू यौमन, मैं एक दिन चलता रहा, या सुम तू यौमन, मैंने एक दिन रोजा रखा। तो देखो यहां पर चलना और रोजा रखना इसमें इम्तिदाद है, रोजा सुबह से शाम तक होता है। इसी तरह चलना एक घंटा भी चलना हो सकता है, दो घंटे भी और तीन घंटे भी, तो इनमें इम्तिदाद है। और कुछ अफाल ऐसे होते हैं जिनमें इम्तिदाद नहीं होता, जैसे तलाक देना, तलाक जैसे ही कोई शख्स बीवी को देगा उसी लम्हे तलाक हो जाएगी, इसमें इम्तिदाद और तूल और लंबाई नहीं है। या इसी तरह निकाह करना, निकाह करने में भी इम्तिदाद और तूल नहीं है, जैसे ही जाब और कबूल करेंगे साथ ही निकाह मुनाकिद हो जाएगा। या इसी तरह बैअ करना, बैअत करना, यह भी इजाब और कबूल का नाम है, जैसे ही इजाब और कबूल करेंगे बैअ हो जाएगी, इसके अंदर भी इम्तिदाद नहीं है। या जैसे आना और जाना, आने के अंदर भी इम्तिदाद नहीं है, जैसे ही कोई शख्स सामने आता है हम कहते हैं वो आ गया, और जैसे ही शख्स नजरों से हटता है हम कहते हैं वो शख्स चला गया। बात समझ में आ गई? तो आना और जाना इनके अंदर भी इम्तिदाद नहीं है। तो लिहाजा अगर यौम जो है उसके अंदर जो फेल अमल कर रहा है जिसके लिए वो जर्फ बन रहा है, अगर वो फेल मुमतद हुआ तो फिर यौम जो है उससे नहार मुराद लेंगे, और अगर वो फिल गैर मुमतद हुआ तो फिर इस सूरत में यौम मुतलके वक्त के माना में होगा, मुतलके वक्त में। और यहां पर क्या कहा है यौम अतज़व्वजू की फअंति तालिकुन, मैंने बताया था यौम का लफ्ज जिस फेल की तरफ मुजाफ हो उसको नहीं देखना आपने, यौम अतज़व्वजू की, यौम की इजाफत तज़व्वुज फेल की तरफ हो रही है लेकिन उसको नहीं देखना, बल्कि जिसके लिए यह मफूल फी बन रहा है, ज़र्फ बन रहा है, उसको देखेंगे, और वो अंति तालिकुन है। वो क्या है? अंति तालिकुन। और तलाक तो गैर मुमतद है, लिहाजा यहां यौम मुतलके वक्त के माना में होगा, लिहाजा जिस वक्त भी वो निकाह करेगा, चाहे दिन को निकाह करे चाहे रात को निकाह करे, तलाक वाकई हो जाएगी। उसके बाद साहिब हिदाय ने आखिर में बतलाया था कि अगर तलाक या जुदाई या हुरमत की निस्बत खावंद अपनी तरफ करे तो फिर क्या हुक्म है। मसलन वैसे तो खावंद बीवी से कहता है तुझे तलाक है, और अगर खावंद यह कहे कि मुझे तेरी तरफ से तलाक है, तो क्या इस सूरत में तलाक होगी या नहीं? तो साहिब हिदाय ने बतलाया कि इस सूरत में तलाक वाकई नहीं होगी भाई। तलाक वाकई नहीं होगी, क्योंकि इसलिए क्योंकि तलाक जो है वह इंदल अहनाफ इजाला कैद का नाम है और कैद औरत के अंदर होती है, औरत मना की गई है कि किसी और खावन से वो निकाह करे या वो घर से निकले खावन की इजाजत के बगैर। तो कैद किसके अंदर है? औरत के अंदर है। और तलाक किस चीज का नाम है? इजाला कैद, कैद को खत्म करने का नाम है। तो ये कैद जब औरत में है तो इस कैद के खत्म करने की निस्बत भी औरत की तरफ की जाएगी कि उसे कैद खत्म की जा रही है, मर्द में तो कोई कैद नहीं, लिहाजा मर्द की तरफ निस्बत नहीं हो सकती। और जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये तलाक जो है ये इजाला मिलके निकाह और इजाला हिल्लत के लिए होती है, और मिलके निकाह खावंद की बीवी में है तो बीवी की खावंद में है, क्योंकि दोनों काजी के पास जाकर मुतालबा कर सकते हैं भाई। औरत वती का मुतालबा कर सकती है और खामन तमकीन का मुतालबा कर सकता है, तुम दोनों को मिलकर निकाह हासिल है और इसी तरह दोनों एक दूसरे के लिए हलाल हैं, तो लिहाजा मिलकर निकाह भी दोनों के दरमियान मुश्तरक, हिल्लत भी दोनों के दरमियान मुश्तरक, तो तलाक इन दोनों के इजाले के लिए आती है तो दोनों की तरफ निस्बत सही है। तो लिहाजा दोनों सूरतों में तलाक वाकई हो जाएगी, चाहे खावंद अपनी तरफ निस्बत करे चाहे बीवी की तरफ, जबकि हमारे नजदीक तलाक इजाला कैद का नाम है और कैद सिर्फ किस में है? औरत में है। और नीज अगर तलाक को इजाला मिल्क के लिए भी मान लें तो मिल्कियत भी खावंद की बीवी के अंदर होती है, चुनाचे इसीलिए खावन को नाकह कहते हैं, निकाह करने वाला, और बीवी के लिए इसमें मफूल का सीगा इस्तेमाल किया जाता है मनकूहा भाई, मनकूहा, जैसे मालिक और ममलूक। देखो मालिक जो है उसके लिए इसमें फाइल इस्तेमाल हो रहा है और ममलूका के लिए इसमें मफूल इस्तेमाल होता है, तो यहां भी नाकह और मनकूहा, तो ये औरत क्या है? मनकूहा है, मालूम है ये ममलूका है। तो अगर तलाक का इजाला मिल्कियत भी माना किया जाए तो निस्बत औरत ही की तरफ करना पड़ेगी, जबकि इसके मुकाबले में जुदाई और हुरमत की निस्बत दोनों की तरफ सही है, दोनों सूरतों में जुदाई आ जाएगी। वजह यह इसलिए क्योंकि जुदाई जो है वो जोड़ को खत्म करने का नाम है, निकाह को खत्म करने का नाम है, और निकाह तो दोनों के दरमियान है, इसमें तो दोनों शरीक हैं, लिहाजा खावन बीवी से कहे कि तू मुझसे जुदा है, या खावन कहे अपनी तरफ निस्बत करे कि मैं तुझसे जुदा हूं, दोनों सूरतों में तलाक हो जाएगी। और या इसी तरह खावन बीवी की तरफ हुरमत की निस्बत करे कि तू मुझ पर हराम है, या अपनी तरफ निस्बत करे कि मैं तुम पर हराम हूं, तो दोनों सूरतों में तलाक वाकई हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए हलाल थे। तो इस हिल्लत में भी दोनों शरीक और निकाह में भी दोनों शरीक, लिहाजा इसलिए जुदाई और हुरमत की निस्बत दोनों की तरफ करना सही है भाई। अब आइए आज के सबक पर। वलौ काला अंति तालिकू वाहिदतन औ ला फलैस बिशयइन, सूरत मसला ये, खामन ने अपनी बीवी से कहा अंति तालिकू वाहिदतन औ ला, बल्कि पहले दूसरी सूरत ले आओ, खामन ने बीवी से कहा अंति तालिकुन औ ला, तुझे तलाक है या नहीं, तुझे तलाक है या नहीं, तो फिर इस सूरत में याद रखो तलाक वाकई नहीं होगी, क्योंकि वो दरमियान में आओ ले आया भाई, और आओ किस लिए लाया जाता है? शक के लिए, जब दो चीजों में से एक में शक हो भाई, तो लिहाजा जब यहां एक तरफ कह रहा है तुझे तलाक है और आगे कह रहा है या नहीं, तो शक आ गया तलाक के होने और ना होने में, और शक की वजह से तलाक वाकई नहीं होगी। दूसरी सूरत भाई, अंति तालिकुन के बाद वाहिदतन लाता है और यूं कहता है अंति तालिकुन वाहिदतन औला, तो इस सूरत में भी जाहिर रिवायत यही है कि इस सूरत में तलाक वाकई नहीं होगी भाई, तलाक वाकई नहीं होगी। तो कहते हैं वलौ काला अंति तालिकुन वाहिदतन औला, खावन बीवी से कहते हैं तुझे एक तलाक है औला या नहीं है, फलै सब इशाइन, तो ये कुछ नहीं है यानी इसे तलाक नहीं होगी। काला रजी अल्लाह ताला अन्हु साहिब हिदाया फरमाते हैं हा कदा दुकिरा फिल जामे सगीर मिन गैर खिलाफिन, इसी तरह जिक्र किया गया है जामे सगीर में बगैर इख्तिलाफ के। यहां साहिब हिदाया कहना यह चाहते हैं कि देखो मतन के अंदर आया वलौ काला अंति तालिकुन वाहिदतन औला फलैस बिशयइन, यह इबारत है जामे सगीर की, और जामे सगीर के अंदर यहां पर कोई इख्तिलाफ जिक्र नहीं कि इमाम मोहम्मद या इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह इस बारे में क्या फरमाते हैं, कोई इख्तिलाफ यहां जिक्र नहीं, तो जाहिर यही लगता है शायद ये हमारे तीनों अइमा का कौल है। जाहिर यही है, लेकिन आपको बताएंगे साहिब हिदायत के नहीं, इसके अंदर भी हमारे अइम्मा का इख्तिलाफ है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह और इसी तरह इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का पहला कौल यह था कि इससे तलाक रजई होगी। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का कौल है इससे तलाक रजई होगी, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का पहला कौल था कि इससे तलाक रजई हो जाएगी। और जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का आखिरी कौल इमाम साहिब के साथ है, इमाम साहिब के नजदीक इससे तलाक नहीं होगी। क्या कहा खावन ने, अंति तालिकू वाहिदतन औला, ये औ किसके दरमियान लाया है, वाहिदतन और ला के दरमियान औ आया है। बात समझ में आ गई। तो जामे सगीर में तो इख्तिलाफ जिक्र नहीं, लेकिन दरअसल यहां इख्तिलाफ है। तो कहते हैं हा कदा जुकिरा फिल जामे सगीर मिन गैर खिलाफिन, इसी तरह जिक्र किया गया है जामे सगीर में बगैर किसी इख्तिलाफ के। वहादा कौल अबी हनीफत व अबी यूसुफ रहमहुमल्लाह ताला आखिरन, और ये इमाम साहेब का कौल है और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का कौल है आखिरन आखिरी। इमाम अबू यूसुफ का आखिरी कौल है ये, पहला कौल उनका इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के साथ है। वह अला कौल मोहम्मदिन रहमहुल्लाह, वह हुआ कौल अबी यूसुफ रहमतुल्लाह अव्वलन, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल पर, और वही पहला कौल है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का भी, उसके मुताबिक तू तल्लक वाहिदतन रजईयतन, इस सूरत में औरत को एक तलाक रजई हो जाएगी। खामन ने क्या कहा है, अंति तालिकू वाहिदतन औला, अगर वाहिदतन हटा दें फिर तो बिल इत्तेफाक कोई तलाक वाकई नहीं, लेकिन यहां वाहिदतन के बाद वो औलाया है। तो कहते हैं ज़ुकिर क़ौल मुहम्मदिन रहिमहुल्लाह फी किताब अत्तलाक फीमा इज़ा क़ाला लिमरअतिही, अब साहिब हिदायत बतलाने लगे हैं कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का कौल मबसूत के अंदर किताब अत्तलाक में जिक्र है। कहां पर, मतन में, जामे सगीर के मतन में तो कोई इख्तिलाफ जिक्र नहीं किया गया, लेकिन साहिब हिदायत ने बतलाया इख्तिलाफ है। और कहां से अखज किया, दलील क्या, वो फरमाते हैं कि मबसूद की किताब उत्तलाक में एक मसला जिक्र है, उससे पता चलता है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल का। देखो वो आगे जिक्र करेंगे। तो कहते हैं दुकीरा कौल मुहम्मदिन रहमहुल्लाह फी किताब तलाकी, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का कौल जिक्र किया गया है किताब तलाक में, यानी मबसूत की किताब तलाक में। फी मा इदा काल लिमरअतिही, उस सूरत में जब खामन ने अपनी बीवी से कहा अंति तालिकू वाहिदतन औ ला शैआ, मतन में क्या आया, अंति तालिकू वाहिदतन औ ला, औ के बाद सिर्फ ला है, लेकिन मबसूद के अंदर किताब तलाक में यही मसला जिक्र है, वहां है औ ला शैआ, तो वहां शय का लफ्ज भी जिक्र है ला के बाद। अंति तालिकू वाहिदतन औ ला शैआ, तुझे एक तलाक है औ ला शैआ या कुछ भी नहीं। तो साहिब हिदायत बतलाएंगे कि भाई शय को जिक्र करें या ना करें, मसला एक ही तरह है। तो जब मबसूद के अंदर ला शैआ के अंदर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक तलाक रजई हो जाएगी, क्या फरमाते हैं, जब एक तलाक रजई हो जाएगी लाशय के अंदर, तो ला के अंदर भी वही मसला होगा, लिहाजा यहां भी उनके नजदीक मालूम हुआ एक तलाक हो जाएगी, क्योंकि दोनों मसले बिल्कुल एक जैसे हैं। तो कहते हैं इजा काल अली इमराती, जब किसी शख्स ने अपनी बीवी से कहा अंति तालिकू वाहिदतन औ ला शैआ, कि तुझे एक तलाक है या कुछ भी नहीं है, तो इससे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल का पता चल गया। वला फर्का बैनल मसअलतैन, और दोनों मसलों में कोई फर्क नहीं है, चाहे औ ला कहें चाहे औ ला शैआ कहें। भाई वलव कानल मजकूर हा हुना कौल अल कुल्ली, तो देखो जामे सगीर के अंदर तो इख्तिलाफ को जिक्र नहीं किया, लेकिन मबसूद से इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल का पता चल गया कि उनका यह कौल नहीं है भाई। तो लिहाजा मालूम हुआ जो मतन के अंदर जिक्र किया गया है यह हजरत शेखैन रहमहुमल्लाह का कौल है, लेकिन अगर यह मान लिया जाए कि यह सब का कौल है, अगर मान लिया जाए कि यह जो मतन में कौल आया था यह सब का कौल है, क्योंकि यहां तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने इख्तिलाफ जिक्र ही नहीं किया जामे सगीर में, जामे सगीर भी तो उनकी किताब है ना, तो उन्होंने मतन में कोई इख्तिलाफ नहीं जिक्र किया, तो या तो यह कहना पड़ेगा मसले में इख्तिलाफ है लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने यहां जिक्र नहीं फरमाया। और अगर आप यह मानते हैं कि नहीं ये जो मतन में आया ये सब का कौल है, हमारे तीनों अइमा का कौल है, तो फिर मानना पड़ेगा कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह से इस सिलसिले में दो रिवायतें हैं, क्योंकि ये यहां कहा कि इसे तलाक नहीं होगी और यह सबका कौल है और सब में इमाम मोहम्मद भी आ गए और दूसरी जगह मबसूत में वो फरमा रहे औला शैआ उसके अंदर एक तलाक रजई हो जाएगी, हालांकि वो भी बिल्कुल इसी की तरह है। तो मालूम हुआ इस सिलसिले में इमाम मोहम्मद रमला की फिर दो रिवायतों को मानना पड़ेगा। तो कहते हैं वला उकान अल मस्कूरू हा हुना कौल अल कुल्ली, और अगर यहां पर जो जिक्र किया गया है यानी जामे सगीर के अंदर वो सब का कौल है, तूफान मोहम्मदिन रहमहुल्लाहु ताला रिवायतानी, तो मालूम हुआ फिर इमाम मोहम्मद रहमला से दो रिवायतें हैं। लहू, इमाम मोहम्मद रहमला की दलील ये है, इमाम मोहम्मद रहमला क्या फरमाते थे एक तलाक रजई हो जाएगी, अब उसकी दलील दे रहे हैं। लहू, इमाम मोहम्मद रहमला की दलील यह है, अन्नहु अदखल शक फिल वाहिदति लिदुखूल कलिमति औ बैनहा व बैन नफी, कि खावन ने शक दाखिल कर दिया फिल वाहिदति किसमें एक तलाक में, लिदुखूल कलिमति औ बैनहा व बैन नफी बवजह कलिमा औ के दाखिल होने के इस वाहिदा और नफी के बीच, अंतितालिकुं वाहिदतन औला, तो ये औ कहां ले आया खावंद, वाहिदतन और ला के बीच में आया, तो लिहाजा इस वाहिदतन में तो शक आ गया, किसकी वजह से आगे आने वाले औला की वजह से, तो लिहाजा इस वाहिदा का एतबार तो साकित हो गया, वाहिदा का एतबार तो साकित हो गया, लेकिन पीछे अंतितालिकुन तो रह गया। कहना ये चाहते हैं ये जो औ आया है इसका ताल्लुक सिर्फ वाहिदतन से है, पीछे जो अंति तालिकुन आया था उससे इसका ताल्लुक नहीं है, तो वाहिदतन और ला के अंदर शक आ गया तो ये वाहिदतन तो साकित हो गया लेकिन पीछे अंति तालिकुन तो रह गया, उससे एक तलाक रजई हो जाएगी क्योंकि वो सरीह है भाई। तो कहते हैं इमाम मोहम्मद रहमला की दलील यह है कि अन्नहु अदखल शक का फिल वाहिदती, के खावन ने ए वाहिदा के अंदर शक दाखिल कर दिया, लिदुखूल कलिमती औ बैनहा व बैन नफी बवजह कलिमा औ के दाखिल होने के उस वाहिदा और नफी के दरमियान, फयस्कुतु एतबारुल वाहिदती, तो वाहिदा का एतबार तो साकित हो गया, व यबका कौलुहु अंति तालिकुन, हर खावन का कौल अंति तालिकुन बाकी रह गया, बिखिलाफी कौलिही अंति तालिकुन औला, बखिलाफ खावन के इस कौल के अंति तालिकुन औला जी, इसमें क्या मसला होगा, अंति तालिकुन औ ला, यहां तो असले तलाक के अंदर ही शक आ गया, यहां वाहिदा का लफ्ज नहीं है, तुझे तलाक है औ ला या नहीं, तो असले तलाक के वाके करने में ही शक आ गया, इसलिए यहां तो बिल इत्तेफाक तलाक वाके नहीं होगी, लेकिन अगर वाहिदा को जिक्र कर दिया तो ये वाहिदा तो औ की वजह से साकित हो जाएगा लेकिन अंति तालिकुन साकित नहीं होगा। तो कहते हैं बिखिलाफी कौलिही अंति तालिकुन औला, बखिलाफ खावन के इस कौल के अंति तालिकुन औला, लिअन्नहु अदखल शक फी असल ईकाई, इसलिए क्योंकि यहां खावन ने शक दाखिल कर दिया है असल ईका में, असल तलाक वाके करने में ही, फला या कौल, लिहाजा इस सूरत में तलाक वाके नहीं होगी। बात भी समझ में आ रही है कि नहीं। वलहुमा शेखैन रहिमहुमल्लाह की दलील यह है कि अन्नल्वस्व मताकुरिन बिल अदद कान अल्वुकू बिदिक्रिल अदद, शेखैन रहिमहुमल्लाह की दलील समझ लो भाई, वो फरमाते हैं कि जब तलाक के साथ अदद जिक्र किया जाए तो तलाक अदद के जरिए वाके होती है
जी।
किसके जरिए, मसलन खावन बीवी से अगर सिर्फ यह कहे अंति तालिकुन फिर तो अंति तालिकुन से तलाक हो रही है, लेकिन अगर खामन बीवी से कहता है अंति तालिकुन वाहिदतन तो ये तलाक वाहिदतन से हो रही है, किससे हो रही है, और मसलन तस्निया ले आओ अंति तालिकुन इस्नतैनी, तो इससे बीवी को अंति तालिकुन से तलाक नहीं हो रही इस्नतैन से हो रही है क्योंकि अंति तालिकुन तो सरीह है वो तो तकाजा कर रहा है एक तलाक होनी चाहिए लेकिन सिंतैन ने तकाजा किया दो होनी चाहिए और दो तलाकें हो गई। इसी तरह खावन बीबी से कहता है अंति तालिकुन सलासन तो इस सूरत में अंति तालिकुन से तलाक नहीं हो रही बल्कि सलासन से हो रही है क्योंकि अंति तालिकुन तो सरीह है और सरीह से तो एक रजई तलाक होती है लेकिन यहां फुकहा फरमाते हैं अंति तालिकुन सलासन में तीन तलाकें हो रही हैं। मालूम हो जब अंति तालिकुन के साथ अदद आ जाए तो तलाक अदद के जरिए वाके होती है और यह बात पीछे गुजर चुकी है अंति तालिकुन सलासन पीछे इख्तिलाफ जिक्र हुआ था। हमारे नजदीक अंति तालिकुन इसके जरिए एक तलाक होती है और वो भी रजई होगी और इसमें नीयत की भी कोई हाजत नहीं, क्योंकि ये सरीह है, इसका और कोई माना ही नहीं है। और इसके अंदर अगर खावन दो या तीन की नीयत करता है तो वो लगव है, क्योंकि अंति तालिकुन में दो या तीन का इहतमाल नहीं। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं अंति तालिकुन सलासन, पीछे मसला जिक्र हुआ था, वो फरमाते हैं अंति तालिकुन सलासन, ये सलासन तमीज है और तमीज इबहाम को दूर करती है, यानी माकबल कलाम के अंदर कई एहतमाल होते हैं, उनमें से एक एहतमाल को यह तमीज आकर पक्का कर देती है। तो यह सलासन तमीज है, मालूम हुआ माकबल अंति तालिकुन में एक दो और तीन, तीनों का एहतमाल है और उसी में से एक एहतमाल सलासन भी है, तो उसको इस सलासन ने आकर पक्का कर दिया। या इसी तरह खावन बीबी से कहता है अंति तालिकुस नतैनी, अंति तालिकुन इस नतैनी, कि तुझे दो तलाकें हैं, तो इसके अंदर भी इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो इस नतैन आया ये तमीज है, और तमीज किस लिए आती है, माकबल से इबहाम को दूर करती है, मानू अंति तालिकुन के अंदर इबहाम था कि एक है या दो हैं या तीन हैं, तो फिर तमीज उन्हीं इहतमालात में से एक इहतमाल को पक्का कर देती है। तो इस नतैन ने आकर बतला दिया कि दो तलाकें हैं, मालूम हुआ अंति तालिकुन में इस नतैन का इहतमाल था, जब ही तो आगे इस नतैन तमीज आ सकती है, एक लफ्ज में एक माना का इहतमाल ही ना हो तो वो वहां तमीज भी नहीं बन सकती। जैसे मसलन मैंने मिसाल जिक्र की थी ताबा जैदुन, जैद अच्छा है, भाई किस एतबार से अच्छा है, इसमें इहतमाल है, हो सकता है अपनी जात के एतबार से अच्छा हो सकता है अपने इलम के एतबार से अच्छा हो सकता है अपने बाप के एतबार से अच्छा हो, तो तीनों इहतमाल हैं, तो आगे तीनों को आप तमीज ला सकते हैं। मसलन आप नफसन को ले आते हैं, ताबा जैदुन नफसन, क्या माना, जैद अच्छा है अपनी जात के एतबार से, तो देखो नफसन जो तमीज है वो माकबल के एक इहतमाल को पक्का कर देती है। तो लिहाजा यहां पर भी इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील मैं जिक्र कर रहा हूं, जहां बाबू इकाई तलाक शुरू किया था वहां पहले दूसरे सफे पर यह दलील आई थी उनकी, वो फरमाते अंति तालिकुन जो है इसकी तमीज इस नतैन भी आ सकती है और सलासन भी आ सकती है, मालूम अंति तालिकुन में इस नतैन का भी इहतमाल है और सलासन का भी इहतमाल है। हमने जवाब दिया था कि नहीं, अंति तालिकुन में न इस नतैन का इहतमाल न सलासन का इहतमाल है, बल्कि यहां पर ये जो सलासन आता है या इस नतैन आता है ये तमीज नहीं है बल्कि ये सिफत है मस्तर महजूफ की। अंति तालिकुन सलासन आई अंति तालिकुन तलाकन सलासन, तो ये तलाकन मौसूफ महजूफ है भाई, तो ये सलासन उस तलाक की सिफत है, अंति तालिकुन से तमीज नहीं है। तो अब यहां क्या मसला जिक्र हुआ, अंति तालिकुन वाहिदतन औ ला, तो यहां पर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का मजहब जिक्र हो गया, वो फरमाते हैं कि इस सूरत में एक रजही तलाक वाके हो जाएगी, क्योंकि ये जो लाओ आया है इसका ताल्लुक सिर्फ वाहिदतन से है और इसकी वजह से वाहिदतन तो साकित हो गया क्योंकि उसमें शक आ गया, वाहिदतन औ ला, तो लिहाजा बाकी अंति तालिकुन रह गया तो उससे एक तलाक रजही हो जाएगी। जबकि अब शेखैन रहमोमल्ला की दलील जिक्र फरमा रहे हैं, शेखैन रहमोमल्ला फरमाते हैं कि जब तलाक के साथ अदद मिला दिया जाए अंति तालिकुन इस नतैन या अंति तालिकुन सलासन, तो तलाक इस अदद के जरिए वाक होती है और अदद अदद से पहले मौसूफ महजूफ होता है, तलाकन सलासन, अगर मुजक्कर का लफ्ज हो तो तलाक लफ्ज ले आए, मौसूफ तलाक ले आए, और अगर मुअन्नस का हो तो ततलीकतुन ले आए। अगर खावन ने क्या कहा है अंति तालिकुन वाहिदतन, तो माना होगा अंति तालिकुन ततलीकतन वाहिदतन, तवज्जो है, और अल कहा है अंति तालिकुस नतैनी, तो अंति तालिकुन ततलीकतैनी स्नतैनी। तो शेखैन रहमहुमल्ला फरमाते हैं जब तलाक के साथ आदत जिक्र किया जाए तो यह तलाक आदत के जरिए वाके होती है और वहां उसका मौसूफ तलाक या ततलीका महजूफ होता है, तो इस मसदर और आदत के जरिए दरअसल तलाक वाके होती है। चुनांचे दलील देते हैं, दलील देते हैं, कहते हैं देखो गैर मदखूल बिहा औरत, आप पढ़ चुके हैं, गैर मदखूल बिहा औरत को एक भी तलाक दे दी जाए चाहे तलाक रजई ही क्यों ना हो, वो एक रजई से ही वो फौरन बाइना हो जाती है और निकाह टूट जाता है और उस पर इद्दत भी नहीं है, वो फौरन ही आगे निकाह कर सकती है। एक औरत है उसकी अभी रुखसती नहीं हुई, खामन ने उसको कहा अंति तालिकुन, जैसे ही ये कहा साथ ही निकाह टूट गया और उसी घड़ी में वो औरत आगे जहां मर्जी निकाह कर सकती है, इस पर कोई इद्दत नहीं है भाई। तो मालूम हुआ गैर मदखूल बिहा को रजई तलाक भी दें तो वो फौरन बाइन बन जाती है भाई। इसी तरह याद रखो, इसी तरह याद रखो, अगर गैर मदखूल बिहा को खावन ज्यादा तलाकें देता है, एक से ज्यादा, वो अगर अलग अलग लफ्जों से तलाक देगा, मसलन गैर मदखूल बिहा है, खामन ने उससे कहा अंति तालिकुन अंति तालिकुन अंति तालिकुन, और नियत तीन की कर रहा है, हर अंति तालिकुन के जरिए वो एक तलाक की नियत कर रहा है, और कितनी दफा कहा, तीन दफा। तो याद रखो फुकहा फरमाते हैं पहला अंति तालिकुन जैसे ही आया गैर मदखूल बिहा को तलाक हो गई और साथ ही वो बाइना हो गई, निकाह भी टूट गया, बिल्कुल खत्म हो गया। अगला अंति तालिकुन जब उसने कहा तो अब तो वो उसकी मनकूहा ही ना रही, निकाह टूट चुका है, लिहाजा वो अगली तलाक लग्व चली गई और तीसरी तलाक भी इसी तरह लग्व चली गई। लेकिन लेकिन अगर गैर मदखूल बिहा को खावन यूं कहता है अंति तालिकुन सलासन, तीनों तलाकें इकट्ठी दे रहा है, तो फिर तीनों इकट्ठी भी वाकई हो जाएंगी। अगर अलग अलग देता फिर तो पहली से ही उसने बाइना हो जाना था, लेकिन जब तीनों इकट्ठी दे रहा है तो तीनों इकट्ठी आ रही हैं, जब इकट्ठी आ रही हैं तो तीनों वाकई हो जाएंगी। अगर इनमें तरतीब होती, पहले एक आ रही होती फिर दूसरी फिर तीसरी, फिर तो पहली से ही उसने बाइना हो जाना था, लेकिन जब तीनों तलाकें इकट्ठी आ रही हैं तो वो इकट्ठी वाकई हो जाएंगी और ये तीन तलाकों के साथ बाइना हो जाएगी और अब दोबारा निकाह की भी कोई सूरत नहीं है, इल्ला ये कि ये औरत किसी और शख्स से निकाह करे और वो फिर कभी जिंदगी में तलाक दे दे या उसका इंतकाल हो जाए तो फिर ही इस पहले खावन से निकाह हो सकता है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो शेखैन रहमहुमल्ला की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं कि जब अंति तालिकुन के साथ आदद मिल जाए तो तलाक आदद के जरिए होती है, अंति तालिकुन के जरिए नहीं। और दलील उसकी कहते हैं देखो, एक शख्स की गैर मदखूल बिहा बीवी है, अभी रुखसती नहीं हुई, वो उसको कहता है अंति तालिकुन सलासन, और इस सूरत में बिल इतफाक इस औरत को तीन तलाकें हो जाती हैं। अगर अंति तालिकुन से तलाक हो रही होती, किससे? अगर अंति तालिकुन से तलाक हो रही होती तो फिर तो ये एक से बाइना हो जाती और सलासन लग्व चला जाता जी। लेकिन यहां बिल इतफाक इस औरत को तीनों इकट्ठी तलाकें हो रही हैं और ये इसी सूरत में हो सकता है जब ये कहा जाए कि अंति तालिकुन से तलाक नहीं हो रही बल्कि सलासन यानी तलाकन सलासन से तलाक हो रही है। सलासन से पहले मौसूफ महजूफ निकाल लो, तलाकन सलासन, तो तलाकन सलासन से तीन तलाकें हो रही हैं और इकट्ठी हो रही हैं। दलील समझ में आई कि अगर अंति तालिकुन से तलाक होती फिर तो एक तलाक से ये बाइना हो जाती और सलासन क्या हो जाता, लग्व हो जाता, लेकिन यहां तीनों इकट्ठी हो रही हैं, मालूम हुआ अंति तालिकुन से तलाक नहीं हुई बल्कि किससे हुई है, सलासन से हुई है भाई। तो कहते हैं वलहुमा शेखैन रहमहुमल्ला की दलील यह है कि अन्नल वस्फ मताकुरीन बिल अददी, के वसफ यानी तालिकुन को जब मिला दिया जाए अदद के साथ तो कानल वुकू बिज़िक्र अल अददी, तो तलाक का वाक़े होना अदद के जिक्र से होता है। अला तारा, क्या आप देखते नहीं, अन्नहु लौ क़ाला लिग़ैर अल मदख़ूल बिहा, अगर खावन ने गैर मदख़ूल बिहा बीवी से कहा अंति तालिकुन सलासन तो तुतल्लकु सलासन, तो उस औरत को तीन तलाकें हो जाएंगी। वलौ कानल वुकू बिल वस्फ, अगर तलाक का वुकू वसफ यानी अंति तालिकुन से होता, लगा जिक्र सलासी, फिर तो लग्व हो जाता सलासा का जिक्र। वहादा, और ये इस वजह से लि अन्नल वाकिया फिल हकीकती, भाई ये किस तरह अदद से किस तरह हो रही है, मैंने बतला दिया कि अदद से पहले उसका मौसूफ तलाक या ततलीकतुन महजूफ है। कहते हैं वहादा, और ये इस वजह से लि अन्नल वाकिया फिल हकीकती इन्नमा हुवल मनऊतुल महजूफू, कि वो जो तलाक वो वाकई होती है वो हकीकत के अंदर वो मनऊत है, वो मौसूफ है, अल महजूफ जो महजूफ है। तो कहते हैं वहादा लि अन्नल वाकिया फिल हकीकती इन्नमा हुवल मनऊतुल महजूफू, कि वो जो वाकई होता है वो हकीकत में वो मौसूफ महजूफ है यानी मस्तर है। माना हो, और खावन के कौल का माना यह होगा अंति तालिकुन ततलीकतन वाहिदतन, तो अंति तालिकुन वाहिदतन, इसका क्या माना है, अंति तालिकुन ततलीकतन वाहिदतन, तो माना इसका जो है अंतितालिकुन तत्लीकतन वाहिदतन होगा अला मा मर्रा, उस वजह से जो गुजर गई, जो पीछे मैंने बताया बाबुल इका के अंदर इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये सलासन क्या है, तमीज है। हम कहते हैं नहीं, ये मस्तर महजूफ की सिफत है भाई। वह इदाकान अल वाकियो माकान अल आददु नातन लहू। अब दलील चल रही है, खावन ने बीवी से क्या कहा, अंती तालिकुन वाहिदतन औला। तो हमारे नजदीक जब वाहिदतन आदद आ गया तो तलाक इसी वाहिदतन से हो रही है, और इसी वाहिदतन के साथ तो उसने औ ला इसको भी जिक्र कर दिया, तो लिहाजा इस तलाक के वाके होने में क्या आ गया, शक, लिहाजा तलाक वाके नहीं होगी। तो कहते हैं वह इदा कान अल वाके मा कान अल आदद नातन लहू, और जब वाके जो है वो तलाक है जिसके लिए आदत सिफत है, तो कान शक को दाखिलन फी असलिल ईकाई, तो असले ईका के अंदर ही शक दाखिल हो गया, तलाक के वाके करने में ही शक आ गया, फला या काउशन, तो कोई छह वाके नहीं होगी। मसला भी समझ में आया कि नहीं। आगे देखिए, वला काल अंति तालिकुम मा मौती औ मा मौती की फलैसा बिशैन, सूरत मसला ये, खावन ने बीवी से कहा अंति तालिकुम मा मौती, तुझे तलाक है मेरी मौत के साथ, या अंति तालिकुन मा मौती की, तुझे तलाक है तेरी मौत के साथ। तो अपनी मौत को जिक्र किया या बीवी की मौत को जिक्र किया, तो याद रखो इस सूरत में तलाक वाके नहीं होगी भाई, तलाक वाके नहीं होगी भाई। वजह क्या वजह है, कहते हैं इसलिए, इसलिए एक जाब्ता याद रखें, आगे साहिब हिदायत भी जिक्र फरमाएंगे लेकिन वो अगले मसलों में जिक्र फरमाएंगे। जाब्ता याद रखो, जब एक चीज को एक शर्त के साथ मुअल्लक कर दिया जाए, तो ये जो मुअल्लक है ये सबब बनता है जब शर्त पाई जाए
जी।
जब शर्त पाई जाए, मसलन खावन ने बीवी से कहा अंति तालिकुन इन दखलती दार, तुझे तलाक है अगर तू उस घर में गई। तो देखो जब वो औरत उस घर में जाएगी तो उस वक्त तलाक वाके होगी, हमारे नजदीक भी उस वक्त तलाक होगी और इमाम शाफई रहमतुल्लाह के नजदीक भी उसी वक्त तलाक होगी। लेकिन दोनों फर्क करते हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक जब खावन ने कहा अंति तालिकुन इन दखलती दारा, तो अंति तालिकुन आ गया, क्या आ गया, और ये तलाक का सबब बन रहा है, ये चाहता है इसकी वजह से तलाक वाके हो जाए, लेकिन शर्त ने हुक्म को रोक दिया। शर्त क्या जिक्र की उसने, अंति तालिकुन के साथ ही उसने कहा इन दखलती दारा, सिर्फ अंति तालिकुन कहता तो तलाक वाके हो जाती, लेकिन साथ ही उसने इन दखलती दारा अगर तू उस घर में गई, तो ये जो शर्त साथ जिक्र कर दी, इस शर्त ने हुक्म को आने से रोक दिया। अंति तालिकुन मौजूद है, वो तलाक का सबब बन रहा है, लेकिन शर्त हुक्म को नहीं आने दे रही, यानी तलाक वाके नहीं हो रही, और औरत जब उस घर में जाएगी तो तलाक वाके हो जाएगी, यानी हुक्म आ जाएगा
जी।
तो उनके नजदीक अंति तालिकुन तलाक का सबब बनता है इंद तकल्लुम, यानी जिस वक्त खावन ने अंति तालिकुन कहा वो उसी वक्त तलाक का सबब बना, लेकिन हुक्म नहीं आ रहा, एक मानिया आ गया, एक रुकावट आ गई, और हुक्म कब आएगा, जब शर्त पाई जाएगी
जी।
तो वजह है, जैसे ही खावन ने कहा अंति तालिकुन तो ये फौरन तलाक का सबब बना, और अब ये चाहता है फौरन तलाक आ जाए, लेकिन इन दखलती दार ने क्या कर दिया, इस तलाक के आने को रोक दिया। तो अंति तालिकुन तलाक का सबब बन रहा है, लेकिन ये आगे जो शर्त है ये चूंकि अभी नहीं पाई गई, ये हुक्म को नहीं आने दे रहा, और जब शर्त पाई जाएगी तो ये हुक्म आ जाएगा, तलाक आ जाएगी। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक मुअल्लक जो है ये अंति तालिकुन को क्या किया है, मुअल्लक किया है, तो ये जो मुअल्लक है ये सबब बनता है इंद तकल्लुम, ये इंद तकल्लुम ही ये सबब बन जाता है, अलबत्ता हुक्म मुअख्खर हो जाता है, हुक्म उस वक्त नहीं आता, जब शर्त पूरी होगी तो फिर हुक्म आ जाएगा, तलाक वाके हो जाएगी। जबकि इंद अलहनाफ, जब खावन ने कहा अंति तालिकुन इन दखलती दारा, तो इन दखलती दार ने अंति तालिकुन को सबब बनने से ही रोक दिया, ये अब तलाक का सबब बन ही नहीं रहा, औरत जिस वक्त उस घर में जाएगी उसी वक्त गोया अंति तालिकुन आएगा, वो सबब बनेगा और साथ ही तलाक भी वाकई हो जाएगी। तो इंदल अहनाफ ये अंति तालिकुन गोया इस वक्त मौजूद ही नहीं है, यूं समझो ये अंति तालिकुन, ये जो इस वक्त खामन ने कहा है अंति तालिकुन इन दखलती दारा, ये वाला अंति तालिकुन ये मुअल्लक है। ये अंति तालिकुन क्या है? मुअल्लक है शर्त के साथ, और मुअल्लक इंदल अहनाफ वो सबब बनता है इंदा वजूद शर्त, जब शर्त पाई जाएगी तब ये अंति तालिकुन तलाक का सबब बनेगा। अभी ये तलाक का सबब ही नहीं बन रहा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक ये इस वक्त भी सबब बन रहा है लेकिन सिर्फ इसका हुक्म नहीं आ रहा, तलाक नहीं आ रही, वो इन दखलती दार ने रोक दी। तो उनके नजदीक अंति तालिकुन ये क्या है? ये जो मुअल्लक है ये तलाक, ये जुबान से दोहराएं भाई, इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक मुअल्लक जो है वो सबब बनता है, सबब बनता है इंद तकल्लुम। दोहराएं भाई, इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक मुअल्लक सबब बनता है इंद तकल्लुम, और सिर्फ हुक्म रुक जाता है, हुक्म बाद में आता है। हम कहते हैं नहीं, लेकिन हमारे नजदीक जो मुअल्लक होता है वो इंद तकल्लुम सबब ही नहीं बनता, बल्कि वो सबब कब बनेगा? इंद वजूद शर्त, जब शर्त पाई जाएगी, जब औरत उस घर में जाएगी तो उस वक्त गोया अंति तालिकुन पाया जाएगा और वो सबब बनेगा और फिर तलाक भी वाकई हो जाएगी। जाब्ता समझ में आ गया? तो हमारे नजदीक मुअल्लक जो है वो सबब बनता है इंद शर्त, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक मुअल्लक जो है वो सबब बनता है इंद तकल्लुम। तो अब देखो बात चल रही थी, खावंद ने बीवी से कहा अंति तालिकुम मा मौती, तुझे तलाक है मा मौती मेरी मौत के साथ जी। तो मालूम हुआ जिस लम्हे खावंद मर रहा है उस लम्हे के अंदर ये अंति तालिकुन आ रहा है जी। और अंति तालिकुन आएगा तो उसके बाद ही तलाक आएगी जी। याद रखो एक है, अभी साहिब हिदायत भी बतलाएंगे, एक है ततलीक एक है तलाक। ततलीक जो है, ततलीक मस्तर है, इसका माना है तलाक देना, और तलाक इसका हुक्म है, खावन तलाक देता है तो तलाक आ जाती है। तो ततलीक क्या है? इल्लत, और तलाक क्या है? उसका हुक्म। तो लिहाजा ये जो खावन ने कहा अंति तालिकुम मा मौती, ये अंति तालिकुन ये मुअल्लक है, ये क्या है? मुअल्लक है, और ये कब आएगा? खावंद की मौत के वक्त। और जब खावंद मर रहा है ऐन उस लम्हे के अंदर अंति तालिकुन आ रहा है, और जब अंति तालिकुन आएगा तो अंति तालिकुन जैसे ही पूरा होगा साथ ही तलाक आ जाएगी जी। क्योंकि अंति तालिकुन तो ततलीक है, ततलीक होगी तो उसके बाद तलाक भी आएगी। तो मालूम हुआ खावन या बीवी की मौत के साथ ततलीक आएगी, यानी ईकाए तलाक आएगा। क्या आएगा? तलाक को वाकई करना उस वक्त है, और ईकाए तलाक के बाद फिर तलाक आया करती है। खावन तलाक दे, तलाक को वाकई करे तो फिर तलाक आती है। तो लिहाजा ऐन मौत के वक्त क्या रहा है? ईकाए तलाक, और उसके बाद क्या आएगी? तलाक। तो ऐन मौत के वक्त जब ईकाए तलाक आ रहा है तो उसके बाद क्या आएगी? तलाक। और उस वक्त तक तो मौत हो चुकी जी। और जब मौत हो गई वो तो महल ही ना रहा तलाक का जी। जब मौत हो गई वो तो खावन में अहलियत ही ना रही तलाक देने की, और अगर बीवी मर रही है तो बीवी तलाक का महल ना रही जी। तो लिहाजा इस सूरत में ये तलाक लग्व हो जाएगी जी। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वलौ काला अंति तालिकुम मा मौती औ मा मौती की, और अगर खावन ने बीवी से कहा तुझे तलाक है मेरी मौत के साथ औ मा मौती की या तेरी मौत के साथ, फलैस बिशयइन, तो ये कुछ भी नहीं है, इसे तलाक वाकई नहीं होगी जी। वजह समझ में आ गई? क्योंकि ईकाए तलाक मौत के साथ होगा और वुकूए तलाक मौत के बाद होगा। तो कहते हैं ली अन्नहू अज़ाफ़त तलाक इला हालतिन मुनाफियतिन लहू, इसलिए क्योंकि खावन ने तलाक की निस्बत की है एक ऐसी हालत की तरह मुनाफियतिन लहू जो तलाक के मुनाफी है। ली अन्ना मौतहू युनाफिल अहलियता, इसलिए क्योंकि खावन की मौत अहलियत के मुनाफी है। जब खावन मर जाएगा उसमें तो तलाक देने की अहलियत ही ना रही, वमौतुहा युनाफिल महलियता, और औरत की जो मौत है वो तलाक के महल होने के मुनाफी है। औरत जब मर गई तो वो तो तलाक का महल ही न रही। वला बुद्दा मिनहुमा, और जरूरी है इन दोनों का होना, खामंद में अहलियत का होना जरूरी है और बीवी का महल तलाक होना जरूरी है। तो खावन मरेगा तो अहलियत ना रहेगी और बीवी मरेगी तो महल ना रहेगा, इसलिए तलाक वाके नहीं होगी। भाई कहते हैं वह ईदा मलक जौज उम्र अतहु औशिक समिन हा औ मलक तिल मर अतु जौजहा औशिक समिन हु वकातिल फुरका। ये बात पहले भी बयान हो चुकी कि खावन या बीवी एक दूसरे के मालिक बने तो साथ ही निकाह जो है वो खत्म हो जाएगा। साथ ही निकाह क्या है, फसख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और याद रखो, पूरा मालिक बने चाहे जुज का मालिक बने, चाहे जुज का। मसलन एक औरत है, उसका खावंद गुलाम है और वो औरत इस खावंद को खरीदती है आका से, तो जैसे ही खरीदेगी मालिक बनेगी, साथ ही निकाह टूट जाएगा। और इसी तरह अगर पूरे खावंद की मालिक नहीं बनी बल्कि उसके कुछ हिस्से की मालिक बनी, मसलन निसफ को खरीदा या सुलुस को खरीदा, तो इस सूरत में भी फौरन निकाह टूट जाएगा। तो कहते हैं वह ईदा मलक जौज उम्र अतहु औशिक सम मिनहा, और अगर खावंद मालिक बन गया अपनी बीवी का, औशिक सम मिनहा, शिक सुन स्वाद के साथ, भाई शिक्स हिस्से को कहते हैं, औशिक सम मिनहा या उसके एक हिस्से का यानी जूज का, जूज का वो एक मालिक बन गया, औ मलकतिल मर अतु जौजहा या औरत अपने खावन की मालिकन बन गई, औशिक सम मिनहु या खावन के एक हिस्से की मालिक बन गई, वकातिल फुरकतु तो जुदाई वाके हो जाएगी, लिमुनाफात इम बैनल मिलकैनी, इसलिए क्योंकि दोनों मिल्कियतों के दरमियान मुनाफात है, मिलके निकाह के साथ मिलके यमीन जमा नहीं हो सकती। अम मामिल कुहा ई याहू, तो औरत का मालिक बनना ई याहू खावंद का, औरत जब मालिक बनेगी फिर क्या खराबी लाजिम आएगी, और खावंद मालिक बनेगा तो फिर क्या खराबी लाजिम आएगी, दोनों को अलग अलग बयान कर रहे हैं साहिब हिदाया। कहते हैं अम मामिल कुहा ई याहू, तो औरत का मालिक बनना ई याहू अपने खावंद का, फल इज्तिमाई बैनल मालिकियत वल ममलूकियत, बवजह जमा हो जाने के मालिकियत और ममलूकियत के। औरत अगर अपने खावंद की मालिक बन गई, चाहे पूरे की मालिक बनी चाहे जूस की मालिक बनी, भाई अभी पिछले सबक में गुजरा कि खावंद को बीवी पर मिलके निकाह हासिल होती है, इसीलिए खावंद को नाकिह कहते हैं और बीवी को मनकूहा और ममलूका कहते हैं। तो लिहाजा मालूम हुआ बीवी ममलूका है और खावंद मालिक है, लेकिन अब जब बीवी ने खावंद को खरीद लिया तो बीवी मालिकन बन गई, तो ममलूका भी है और मालिकन भी है, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही शख्स मालिक भी हो और ममलूक भी हो, ऐसा नहीं हो सकता भाई। लिहाजा इसलिए निकाह क्या हो जाएगा, निकाह टूट जाएगा। अब औरत उस गुलाम की मालिकन है लेकिन निकाह टूट चुका है भाई। तो कहते हैं अम्मा मिल्कुहा इय्याहू, तो औरत का अपने खावन का मालिक बनना, फल इज्तिमाई बैनल मालिकियती वल ममलुकियती, तो इस वजह से कि मालिकियत और ममलुकियत में इज्तिमा लाजिम आता है, तो मालिकियत और ममलुकियत में इज्तिमा लाजिम आता है और मालिकियत और ममलुकियत तो जमा नहीं हो सकती, लिहाजा निकाह खत्म हो जाएगा, निकाह खत्म हो जाएगा। तो अब औरत सिर्फ मालिकन है, अब ममलूका नहीं है वो। वह अम्मा मिल्कुहु इय्याहा, दूसरी सूरत, खावंद बीवी का मालिक बना, खावंद बीवी का मालिक, कहते हैं इस सूरत में भी निकाह फौरन खत्म हो जाएगा। वजह यह कि जो मिलके निकाह शरीयत खावंद को देती है, ये जो खावंद को शरीयत मिलके निकाह देती है, यह जरूरत की वजह से देती है, वरना तो आजाद औरत पर किसी लिहाज से भी किसी को मिल्कियत नहीं होनी चाहिए। वो आजाद औरत है तो किसी को भी इस औरत पर मिल्कियत नहीं होनी चाहिए, लेकिन शरीयत खावंद को जरूरत की वजह से औरत पर मिल्कियत दे देती है, जरूरत और हाजत की वजह से। और वो जरूरत और हाजत जो है वो बकाए नस्ल है कि इनकी नस्ल बाकी रहे। तो शरीयत खावंद को मिलके निकाह देती है बकाए नस्ल की वजह से कि नस्ल बाकी रह सके भाई। अगर मिल्कियत खावंद को नहीं मिलेगी, औरत उसके लिए हलाल नहीं और वो खुद औरत के लिए हलाल नहीं, तो फिर तो बकाए नस्ल नहीं हो सकती, नस्ल बाकी नहीं रह सकती, तो बका इंसान चूंकि बकाए नस्ल का मोहताज है, तो इस हाजत की वजह से शरीयत ने खावंद को बीवी पर मिलके निकाह दे दी, बीवी को खावंद के लिए हलाल कर दिया। तो ये जो मिलके निकाह खावंद को मिलती है ये किस वजह से है? जरूरत की वजह से है। और जब खावंद बीवी को खरीद लेता है, पूरा मालिक बनता है या जुज का मालिक बनता है, तो मिलके यमीन वो तो कवी है और मिलके निकाह वो तो जरूरत की वजह से साबित है। जब मिलके यमीन यानी मिलके रकबी खावंद को हासिल हो रही है, तो अब वो मिल्कियत जो जरूरत की वजह से आई थी अब उसकी कोई हाजत नहीं, लिहाजा वो खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो मिलके यमीन जो है वो असल है, वो जब आ गई तो अब मिलके निकाह जो जरूरत की वजह से थी वो बाकी नहीं रहेगी और वो निकाह खत्म हो जाएगा भाई। तो कहते हैं वह अम्मा मिल्कुहु इय्याहा, और खावंद का अपनी बीवी का मालिक बनना, फली अन्न मिल्क निकाह ही जरूरी, इसलिए क्योंकि मिलके निकाह जो है वो जरूरी है यानी जरूरत की वजह से है बकाए नस्ल के लिए, वरना तो आजाद औरत पर किसी को मिल्कियत नहीं होनी चाहिए। तो कहते हैं फली अन्न मिल्क निकाह ही जरूरी, इसलिए क्योंकि मिल्कियत निकाह जो है वो जरूरत की वजह से है, वला जरूरत मा कियाम मिल्क यमीनी, और कोई जरूरत नहीं है मिल्के यमीन के कायम होते हुए, मिल्के यमीन के मौजूद होते हुए, फयंतफी, लिहाजा मिल्के निकाह मुंतफी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वला विश्तरा हासुम मतलकहा लम यकाशय, उन सूरत मसला ये खावंद ने बीवी को खरीदा, खावंद आजाद था और बीवी बांधी थी, खावंद ने बीवी को खरीदा और खरीदने के बाद उसको तलाक दे दी। कहते हैं नहीं भाई, तलाक लग्व चली गई। क्यों? कहते हैं इसलिए क्योंकि खरीदते ही निकाह टूट गया, जब मिलके निकाह ही नहीं है तो तलाक किसको दे रहा है
जी।
अब ये इसकी बांधी है, ये इसकी बीवी नहीं है भाई। तो कहते हैं वलविश्तरा हा सुम्मा तल्लकहा, और अगर खावंद ने बीवी को खरीदा फिर उसको तलाक दे दी, लम यका शय, उन तो कुछ नहीं वाके होगा, लिअन्न तलाक यस्तदई कियामन निकाह, इसलिए क्योंकि तलाक वो तकाजा करती है कियामे निकाह का, तलाक तकाजा करती है कियामे निकाह का, निकाह होगा तो तलाक होगी, निकाह नहीं तो तलाक भी नहीं। तो कहते हैं लिअन्न तलाक यस्तदई कियामन निकाह, इसलिए क्योंकि तलाक जो है वो तकाजा करती है निकाह के कायम होने का, वला बका अलहु माल मुनाफी, और निकाह की बका नहीं है माल मुनाफी, एक मुनाफी चीज के साथ, मिलके यमीन के साथ मिलके निकाह की बका नहीं हो सकती। वला मिन वजहिन, वला मिन कुल्लि वजहिन, ला मिन वजहिन, ना तो बाज एतबार से, वला मिन कुल्लि वजहिन, और ना हर एतबार से। भाई इधर देखिए, तलाक तकाजा करती है कि मिलके निकाह होनी चाहिए, मिलके निकाह होगी तो फिर ही तलाक भी वाकई होगी, और फिर यह मिलके निकाह पूरे तौर पर मौजूद हो तब भी तलाक हो जाती है, और अगर बाज एतबार से मौजूद है तब भी तलाक हो जाती है। पूरे तौर पर मिलके निकाह हो, मसलन एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया है तो पूरे तौर पर मिलके निकाह मौजूद है, खावन तलाक देगा तो तलाक वाकई हो जाएगी। लेकिन अगर खावन बीवी को एक तलाक दे दे तो अब औरत इद्दत गुजारती है, औरत इद्दत गुजारती है, इद्दत के बाद निकाह टूटेगा, अभी निकाह नहीं टूटा, तो अब इद्दत के दौरान बाज एतबार से निकाह बाकी है, बाज एतबार से निकाह खत्म हो चुका, तवज्जो है। तो अब इस इद्दत के दौरान भी अगर खावन मजीद तलाक देगा तो वह तलाक भी वाकई हो जाएगी, इसलिए क्योंकि तलाक किस चीज का तकाजा करती है? मिलके निकाह का, और औरत जब इद्दत गुजार रही है तो मिलके निकाह पूरे तौर पर तो नहीं लेकिन बाज एतबार से तो मिलके निकाह अभी भी है, निकाह के असरात अभी भी हैं। यह औरत आगे निकाह क्यों नहीं कर सकती? इसी खावंद की वजह से तो आगे निकाह नहीं कर सकती कि कहीं यह उसे हामिला ना हो। तो मालूम हुआ खावन जब तलाक दे देता है तो इद्दत के अंदर बाज एतबार से मिलके निकाह अभी भी है
जी।
बाज एतबार से मिलके निकाह अभी भी है, लिहाजा इस वक्त भी तलाक देगा तो तलाक वाकई हो जाएगी। तो तलाक क्या तकाजा करती है? कि मिलके निकाह या तो कामिल तौर पर होनी चाहिए या बाज एतबार से होनी चाहिए, फिर ही तलाक वाके होती है, वरना तलाक वाके नहीं होती। लेकिन यहां पर जब खावन ने अपनी बीवी को खरीदा तो निकाह मुकम्मल खत्म हो गया, ना तो यह पूरे तौर पर निकाह बाकी है और ना बाज एतबार से निकाह बाकी है, लिहाजा इसलिए यह तलाक लग्व चली जाएगी। खावन ने बीवी को खरीदा और फिर तलाक दी तो यह तलाक लग्व चली जाएगी, क्योंकि ना खावंद को पूरी मिलके निकाह हासिल है और ना बाज एतबार से मिलके निकाह हासिल है। और तलाक के लिए तो जरूरी था या कि पूरी मिलके निकाह हो या बाज एतबार से मिलके निकाह हो। तो कहते हैं लि अन्न तलाक यस्तदई कियामन निकाही, इसलिए क्योंकि तलाक तकाजा करती है निकाह के कायम होने का, वला बका अलहू माल मुनाफी, और निकाह के लिए बका नहीं है एक मुनाफी चीज यानी मिलके यमीन के साथ, ला मिन वजहिन वला मिन कुल्ली वजहिन, ना तो बाज एतबार से निकाह है वला मिन कुल्ली वजहिन और ना हर एतबार से निकाह है, यानी किसी भी एतबार से निकाह नहीं है। बात समझ में आ गई। वकदा इदा मलकत हु औ शिक्सम मिन हु, इसी तरह याद रखो अगर बीवी ने खावंद को खरीदा तो जैसे ही बीवी खावंद को खरीदेगी साथ ही निकाह खत्म हो गया। जब निकाह खत्म हो गया तो अब खावंद तलाक भी दे वो तलाक वाकई नहीं होगी, वो लग्व चली जाएगी। तो कहते हैं वकदा इदा मलकत हु औ शिक्सम मिन हु, और इसी तरह अगर बीवी मालिक बन गई अपने खावंद की औ शिक्सम मिन हु या उसके एक हिस्से की, ला यकउ तलाक, तो फिर इस सूरत में भी तलाक वाक नहीं होगी। लिमा कुल ना मिनल मुनाफाती, उस वजह से जो हमने कहा मिनल मुनाफाती यानी के मुनाफात के, मिलके निकाह और मिलके यमीन में मुनाफात है भाई। وعن محمد رحمه الله انه يقع لان العده واجبه, जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह से एक रिवायत यह है कि तलाक वाके हो जाएगी अगर बीवी ने खावंद को खरीदा है, अगर बीवी ने खावंद को खरीदा है और फिर खावंद ने तलाक दे दी खरीदने के बाद, तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक यह तलाक वाके हो जाएगी। अगर खावंद ने बीवी को खरीदा और फिर खावंद तलाक देता है तो उस सूरत में वो भी फरमाते हैं कि तलाक वाकई नहीं होगी क्योंकि निकाह खत्म हो गया। तो भाई यहां क्यों वाकई होगी जब बीवी ने खावंद को खरीदा है, उस वक्त भी तो निकाह टूट गया। कहते हैं ये जो औरत है इस पर इद्दत वाजिब है। ये जो औरत है, देखो इधर देखो, ये अच्छी तरह समझ लो, ये जरा मुश्किल जगह है। खावंद जब बीवी को खरीदेगा तो निकाह टूट गया, निकाह टूट गया और ये खावंद की बांदी बन गई, तो ये आका बन गया और ये औरत इसकी ममलूका बन गई, और अपनी बांदी से तो आका के लिए सोहबत जायज होती है, लिहाजा यहां पर भी ये आका इस औरत से अब सोहबत कर सकता है। मालूम हुआ इस औरत पर इद्दत नहीं है, मालूम हुआ इस औरत पर इद्दत नहीं, अभी इसका निकाह टूटा है लेकिन फिर भी आका के लिए इसके साथ सोहबत जायज है, वही आका जो पहले इसका खावंद था, तो इसके लिए सोहबत जायज है। तो मालूम है इस औरत पर इद्दत नहीं है। जबकि अगर औरत ने खावंद को खरीदा, औरत ने खावंद को खरीदा है तो साथ ही निकाह टूट गया, निकाह टूट गया और ये इसका क्या बन गया, गुलाम बन गया। तवज्जो है। तो अब ये औरत इस खावंद को आजाद करके इसके साथ निकाह करना चाहती है तो याद रखो इसको इद्दत गुजारना पड़ेगी, फौरन निकाह नहीं कर सकती। तवज्जो है। औरत ने अपने खावंद को खरीदा, खरीदते ही निकाह टूट गया और यह खावंद अब इसका गुलाम बन गया है, गुलाम बन गया। औरत अब इसे क्या करना चाहती है, निकाह। अपने गुलाम से तो निकाह नहीं हो सकता, इसको आजाद करेगी फिर निकाह करेगी। और याद रखो इस औरत पर इद्दत वाजिब है, अब इसको इद्दत तीन हैज गुजारने पड़ेंगे फिर उसके बाद ही ये इसके साथ निकाह कर सकेगी। अगर इसको वो आजाद कर देती है फिर भी इद्दत गुजारना पड़ेगी। तवज्जो है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं कि जब खावंद बीवी को खरीदता है तो उस वक्त भी निकाह टूट जाता है, लेकिन खावंद है उसके लिए फौरन अब उसके साथ वती जायज, क्योंकि वो अब उसकी ममलूका है भाई। तो मालूम है यहां इद्दत नहीं, लेकिन औरत अपने खावंद को खरीदती है तो वहां उसको आजाद करके फौरन निकाह नहीं कर सकती, तो मालूम हुआ वहां इद्दत वाजिब है, इद्दत वाजिब। और जब इद्दत वाजिब है, औरत ने किसको खरीदा, अपने खावंद को, खरीदते ही निकाह टूट गया और निकाह टूटते ही औरत पर क्या आ गई, इद्दत आ गई और इद्दत के दौरान खावन तलाक दे तो तलाक वाकई हो जाती है। लिहाजा इमाम मोहम्मद फरमाते हैं ये खावन जो जिसको औरत ने खरीदा है ये अगर इस को तलाक देगा अपनी बीवी को तो तलाक वाकई हो जाएगी क्योंकि इद्दत के अंदर तलाक वाकई हो जाती है। दलील समझ में आ रही है। तो कहते हैं वान मोहम्मदिन रहिमहुल्ला और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह से रिवायत है अन्नहू यकाउ कि इस सूरत में तलाक वाकई हो जाएगी जब बीवी ने खावन को खरीदा है। लिअन्न अल इद्दत वाजिबतुन इसलिए क्योंकि ये इद्दत इस औरत पर वाजिब है। बिखिलाफ अल फसल अल अव्वली बिखिलाफ पहली फसल के यानी पहली सूरत के जब खावन ने बीवी को खरीदा था वहां इद्दत वाजिब नहीं है। लिअन्नहु ला इद्दत हुनालिका इसलिए क्योंकि वहां पर कोई इद्दत नहीं है। हत्ता हल्लवत उहा लहू यहां तक के खावन के लिए उससे सोहबत जायज होती है। अब वो आका बन चुका है और उसके लिए सोहबत जायज है मालूम हो वहां इद्दत नहीं भाई। तो ये इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की एक रिवायत और उनकी दलील जिक्र कर दी साहिब हिदाया ने। तवज्जो है जाहिर रिवायत में तो क्या आया कि चाहे खावन खरीदे चाहे बीवी खरीदे साथ ही निकाह टूट जाएगा और फिर खामन तलाक देगा तो तलाक वाकई नहीं चाहे बीवी ने खरीदा है चाहे खामन ने उसे खरीदा है तलाक वाकई नहीं। लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह से एक रिवायत क्या है कि अगर बीवी ने खामन को खरीदा है और निकाह टूट गया और खामन फिर तलाक देता है इद्दत के अंदर तो तलाक वाकई हो जाएगी क्योंकि इस पर इद्दत है और इद्दत के अंदर तलाक वाकई हो जाती है। तो ये इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की दलील जिक्र की साहिब हिदाया ने इसका जवाब जिक्र नहीं फरमाया भाई जवाब जिक्र नहीं फरमाया। तो और शारहीन जवाब देते हैं शारहीन जवाब ये देते हैं कि इस औरत पर ये जो बीवी ने अपने खावंद को खरीदा है इस पर इद्दत वाजिब हुई है लेकिन ये इद्दत जुदाई वाली इद्दत है ये तलाक वाली इद्दत नहीं है। एक होती है मुअतद्दतु तलाक वो औरत जो इद्दत गुजार रही है तलाक वाली और एक होती है मुअतद्दतुल फुरका जो जुदाई वाली इद्दत गुजार रही है। तलाक उस औरत पर वाकई होती है जो मुअतद्दतुत तलाक होती है जो मुअतद्दतुल फुरकत होती है उस पर तलाक वाकई नहीं। जैसे आपने मसला पढ़ा एक औरत ने खावंद के दूसरी बीवी के बेटे से गलत ताल्लुक कायम कर लिया तो इसको मुतावात कहते हैं। मुतावात का माना साथ देना। एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया और उसने उस शख्स के दूसरी बीवी से जो बेटा था उसके साथ गलत ताल्लुक कायम कर लिया तो इस मुतावत की वजह से यह औरत खावन पर हराम हो गई हमेशा हमेशा के लिए हुरमत मुसाहरत की वजह से। तवज्जो है। तो इस औरत के साथ अगर खावन सोहबत कर चुका है खावन सोहबत कर चुका है फिर तो इस पर भी इद्दत आएगी भाई। लेकिन यह कौन सी इद्दत है? ये जुदाई वाली इद्दत है ये कोई तलाक वाली इद्दत नहीं है। लिहाजा इसको खावन तलाक देगा तो वो तलाक वाकई नहीं होगी भाई। बात समझ में आ गई। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते थे कि बीवी अपने खावन को खरीदे और फिर बाद में खावन इद्दत के अंदर तलाक दे तो तलाक वाकई हो जाएगी क्योंकि औरत पर इद्दत वाजिब है और इद्दत के अंदर तलाक वाकई हो जाती है। उसका जवाब दे रहे हैं कि भाई ये जो औरत इद्दत गुजार रही है ये जुदाई वाली इद्दत है तलाक वाली इद्दत नहीं। तलाक वाली इद्दत हो उसके अंदर तलाक वाकई हो जाती है जो जुदाई वाली इद्दत हो उसके अंदर तलाक वाकई नहीं होती। लिहाजा यहां भी तलाक वाकई नहीं होगी भाई। और नीस इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते थे कि वो औरत जिसको खावंद ने खरीदा तो खरीदते ही निकाह टूट गया लेकिन खावंद के लिए सोहबत जायज मालूम इस औरत पर इद्दत नहीं। लेकिन कहते नहीं ये इस खावंद के हक में इद्दत नहीं है क्योंकि इसी से तो इसका निकाह था जो अब मालिक बन गया है इसके हक में इद्दत नहीं है। अगर ये औरत इसका किसी और से निकाह करवाता है आका तो फिर इद्दत उसके लिए भी जरूरी है भाई। बात समझ में आ गई। मालूम उस पर भी जिसको खावंद ने खरीदा है उस पर भी इद्दत आती है लेकिन खुद अपने खावंद के हक में वह इद्दत जाहिर नहीं होती बाकियों के हक में वह इद्दत जाहिर होगी वहां बगैर इद्दत के निकाह जायज नहीं भाई। वह इन काल लहा वही अमतुन ली गैरी ही अंति तालिकुन सिंतनी माइत की मौला की ईया की फआत कहा मलक जौजुर रजाता। सूरत मसला ये एक शख्स ने गैर की बांदी से निकाह किया हुआ है वो खावन जो है अपनी बीवी से कहता है अंति तालिकुन सिंतनी माइत की मौला की ईया की कि जब तेरा आका तुझे आजाद करे तो उसके साथ तुझे दो तलाकें हैं। तो तलाक को मुअल्लक कर दिया आका के आजाद करने के साथ, कि जब तेरा आका तुझे आजाद करे तो उसके साथ तुझे दो तलाकें हैं भाई। अब आका ने उसको आजाद कर दिया तो ये तो बांदी थी, और बांदी की तो दो तलाकें होती हैं, और जब आजाद किया तो अब इसकी तलाकें कितनी हो गई? तीन हो गई। तो अब जैसे ही आका आजाद करेगा साथ ही दो तलाकें इस पर पड़ जाएंगी, तो क्या ये अब भी खावन के लिए हलाल है? क्या अब इसकी तलाकें तीन बन गई हैं? तो क्या अब भी खावन रुजू कर सकता है या नहीं? तो आपको बतलाएंगे कि हां, खावन अभी भी रुजू कर सकता है, इसलिए क्योंकि ये तलाकें आजादी के बाद वाकई हुई हैं, और आजाद होते ही औरत की तलाकें तीन हो गई। जैसे ही औरत आजाद हुई उसी लम्हे के अंदर तलाक भी आ गई, लेकिन आजाद हो चुकी है तो तलाक किस पर वाकई हुई? आजाद औरत पर। और आजाद औरत की तो कितनी तलाकें हैं? तीन। और खामन ने तो कितनी दी थी? दो। लिहाजा दो वाकई हो गई, अभी भी एक तलाक बाकी है, लिहाजा खावंद रुजू कर सकता है, खावंद रुजू कर सकता है। तो कहते हैं वह इन काला लहा वही अमतुन लिगैरी ही, और अगर खामन ने अपनी बीवी से कहा इस हाल में कि ये किसी दूसरे की बांदी है, अंति तालिकुन सिंतैनि माइत की मौला की इया की, कि तुझे दो तलाकें हैं माइत की मौला की इया की तेरे आका के तुझे आजाद करने के साथ, फआता कहा तो आका ने उसको आजाद कर दिया, मलका जौजु रजअता तो खावन जो है रुजू का मालिक है। अच्छा भाई, यहां पर एक दो बातें, एक दो चीजें समझ लें। याद रखो एक है इताक और एक है इतक। आताक युतिक इताक का माना है आजाद करना, और ये मालिक का फेल होता है, और फिर इस जब वो मालिक आजाद करेगा तो आजादी आ जाएगी, और आजादी को कहते हैं इतक भाई। तो इताक वो मालिक का फेल है और इत्क उसका असर है, यानी यूं कहो इताक इल्लत है और इत्क उसका असर और हुक्म यानी मालूल है। इताक इल्लत है और इत्क जो है वो उसका मालूल है, उसका असर है, उसका हुक्म है। मालिक जब आजाद करेगा तो वो बांदी आजाद हो जाएगी भाई। इसी तरह याद रखना एक है ततलीक एक है तलाक भाई। ये बात मैंने पहले भी जिक्र की, ततलीक भाई तल्लक युतल्लिक ततलीकन का माना है तलाक देना, और ये खावंद का फेल है, ये खावंद का फेल है। तलाक वो देता है, फिर जब वो ततलीक करेगा तो तलाक आ जाएगी, वो औरत तलाक वाली हो गई। तो ततलीक जो है वो खावंद का फेल है और तलाक उसका असर है भाई। जैसे इताक मालिक का फेल है और इत्क उसका असर है, तवज्जो है। तो यहां पर देखो मतन के अंदर आया, मतन के अंदर जरा खावन के अल्फाज पे गौर करें। खावन ने कहा अंति तालिकुन सिंतैनी, तुझे दो तलाकें हैं माहा इत्क मौला की इया की। यहां इत्क के बजाय इताक होना चाहिए था, मा इताक मौला की इया की तेरे आका के तुझे आजाद करने के साथ। लेकिन मतन के अंदर तो क्या आया है? इत्क का लफ्ज आया है। इत्क का क्या माना? आजाद होना। और इताक का क्या माना? आजाद करना। तो फिर आगे आपको साहिब हिदायत बतलाएंगे कि ये इत्क बमाने इताक के कर लें, ये इत्क किस माना में कर लें? बमाने एताक के भाई, लफ्ज एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो जाते हैं। तो इत्क यहां किस माना में? एताक यानी मजाजी माना में है। इत्क यहां मजाजी माना में है क्योंकि इसका अपना माना तो एताक नहीं है भाई। या इस इत्क के साथ एताक को महजूफ निकाल लें, क्योंकि एताक के बगैर इत्क हो नहीं सकता। तो या तो इसी इत्क के लफ्ज को इताक के माना में लेना पड़ेगा, या इस इत्क के साथ इताक का लफ्ज मुकद्दर निकालना पड़ेगा। गोया खामन ने यूं कहा अंति तालिकुन सिंतैनी मा इत्किन बी इताक मौला की इया की, मा इत्किन बी इताक मौला की इया की, तुझे दो तलाकें हैं मा इत्किन उस आजादी के साथ, बी इताक मौला की इया की जो तेरे आका के तुझे आजाद करने की वजह से आए। तो यहां पर या तो इत्क को अपने ही माना में रखें और बेअताक आगे मुकद्दर अलग निकाल लें, या इस इत्क को ही किस माना में ले लें, एताक के माना में ले लें, यानी मजाजी माना में ले लें। अब देखिए भाई, لأنه علق التطليق بالإعتاق بالعتق لأنه علق التطليق, इसलिए क्योंकि खावंद ने मुअल्लक कर दिया है, التطليق किसको, तलाक देने को, अंति तालिकुन क्या है, तत्लीक है, अंति तालिकुन के जरिए खावंद क्या कर रहा है, तलाक दे रहा है। तो لأنه علق التطليق, इसलिए क्योंकि खावन ने मुअल्लक कर दिया है अब अपने तलाक देने को, बिल इताकी आजाद करने के साथ, अविल इतकिया आजादी के साथ, ये वही दोनों माना बयान कर रहे हैं। खावन ने लफ्ज तो क्या जिक्र किया है, मा इतक, लेकिन या तो इसे मुराद इताक है या इतक अपने ही माना में है, और इताक यहां अलबत्ता महजूफ निकाल लेंगे। तो कहते हैं لأنه علق التعليق بالإعتاق أو العتق, इसलिए क्योंकि खावन ने तत्लीक को मुअल्लक कर दिया है इताक या इतक के साथ, इताक या इतक के साथ, لأن اللفظ ينتظمهما, इसलिए क्योंकि ये लफ्ज दोनों को शामिल है, यानी ये जो इतक का लफ्ज आया इसको अपने हकीकी माना में भी आप रख सकते हैं और आप इसको मजाजी माना इताक में भी ले सकते हैं भाई। لأن اللفظ ينتظمهما, इसलिए क्योंकि ये लफ्ज जो है ये दोनों को शामिल है, ये इत्क का लफ्ज दोनों को शामिल है, आप चाहें इसको इसके हकीकी माना में रखें यानी इत्क कर लें इसका माना और बे इताक अलग महजूफ निकाल लें, या आप इस इत्क को मजाजी माना में कर लें और बे इताक इसी का माना कर लें। तो ये लफ्ज لأن اللفظ ينتظمهما, इसलिए क्योंकि ये लफ्ज दोनों को शामिल है यानी इत्क और इताक को। जी आगे देखिए, व शर्त मायकुनु मादूमन अला खतरिल वजूद, भाई देखिए मतन में क्या आया जरा फिर देखें, ये इबारत खामन ने जो कहा बीवी से, अंति तालिकुन सिंतैनी मा इत्की मौला की इया की, यहां तो कोई शर्त जजा नहीं है, यहां तो कोई शर्त जजानी है, खावन मा का लफ्ज जिक्र कर रहा है, तुझे दो तलाकें हैं तेरे आका के आजाद करने के साथ, तो यहां तो शर्त और जजा है ही नहीं, तालीक है ही नहीं, लेकिन साहिब हिदाया ने पीछे क्या कहा, لأنه علق التعليق بالإعتاق أو العتق, कि खामन ने तत्लीक को मुअल्लक किया है इताक या इतक के साथ। तो सवाल पैदा होता है कि तालीक यहां कहां पर है, यहां पर तो मा का लफ्ज है भाई, यहां तो तालीक नहीं है। तो साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे भाई कि यहां पर तालीक है, इसलिए क्योंकि शर्त जो होती है, शर्त उसको कहते हैं जो फिलहाल तो मौजूद नहीं लेकिन उसके होने का इम्कान हो और उसके साथ हुक्म का ताल्लुक हो, उसको शर्त कहते हैं। तो जिस वक्त खावन ने बीवी से कहा तो उस वक्त अभी इताक नहीं हुआ, वो आजाद नहीं हुई, और नीज इस इताक के साथ उसकी तलाक का ताल्लुक है, तलाक का जो हुक्म है उसका, तो लिहाजा इसको शर्त कहेंगे। क्या कहेंगे, शर्त किसे कहते हैं, जो तकल्लुम के वक्त तो मौजूद नहीं अलबत्ता उसके होने का इम्कान है और नीज उसके साथ उस हुक्म का ताल्लुक भी है। तो यहां पर इताक भी ऐसा ही है, ये जिस वक्त खामन ने यह बात की है इताक अभी नहीं है, मादूम है, लेकिन इसके होने का इम्कान है कि शायद आका किसी वक्त आजाद कर दे, और नीज इताक के साथ हुक्म का ताल्लुक भी है, जब वो इताक करेगा तो साथ ये दो तलाकें भी वाकई हो जाएंगी, तो इस चीज को शर्त कहते हैं। बात समझ में आ गई, देखिए भाई, तो कहते हैं व शर्त मायकुनु मादूमन अला खतरिल वजूदी, कि शर्त जो है वो चीज होती है, मायकुनु मादूमन, जो मादूम होती है, अला खतरिल वजूदी, लेकिन उसके वजूद का इम्कान होता है, शर्त वो चीज है जो तकल्लुम के वक्त मादूम होती है लेकिन उसके वजूद का इम्कान है। मसलन खावन ने बीवी से कहा अंति तालिकुन इन दखलती दारा, तुझे तलाक है अगर तू उस घर में गई, तो देखो इस वक्त उस घर में जाना मौजूद नहीं लेकिन इम्कान है, और नीज इसके साथ हुक्म का भी ताल्लुक है, जब उस घर में जाएगी तो तलाक हो जाएगी। तो कहते हैं वशर्त तुमा यकूनु मादूम मन आला खतर इल वजूदी, शर्त वो चीज होती है जो मादूम होती है लेकिन उसके वजूद का इम्कान होता है। वलिल हुक्म ताल्लुकुम बिही, और हुक्म का भी उससे ताल्लुक होता है। वल मजकूर बिहाद ही सिफती, और जो आजादी जो जिक्र की गई वो भी इसी सिफत पर है। खामन ने जब तलाक दी उस वक्त आजादी मौजूद नहीं और उसके होने का इम्कान है, और नीज उसके साथ तलाक के हुक्म का ताल्लुक भी है भाई। तो कहते हैं वल मजकूर बिहाद ही सिफती, और वो इत्क जिसको जिक्र किया गया वो भी इसी सिफत पर है। वल मुअल्लक बिही तत्लीक, और वो चीज जिसको इस आजादी के साथ मुअल्लक किया गया है, अत तत्लीक वो क्या है, तत्लीक है यानी खावंद का तलाक देना है भाई। तत्लीक को मुअल्लक किया है, तलाक को न कहे मुअल्लक किया है, किसको तत्लीक, क्योंकि खावंद का फेल तत्लीक है, खावंद तलाक दे सकता है, और तलाक देने के बाद जो तलाक आती है वो कोई खावंद की इख्तियार से नहीं आती, वो शरअन इस तत्लीक के बाद खुद ब खुद तलाक आ जाती है
जी।
तो तलाक खावंद के इख्तियार में नहीं है बल्कि तत्लीक खावंद के इख्तियार में है भाई। तो कहते हैं वल मुअल्लक बिही तत्लीक, और वो चीज जिसको मुअल्लक किया गया है वो तत्लीक है। लिअन्न फी तअलीकात यसीरु तसर्रुफु तत्लीकन इंद अश्शर्त इंदना, इधर देखिए भाई, मैंने आपको बतलाया था कि हमारे नजदीक मुअल्लक मुअल्लक वो सबब बनता है जब शर्त पाई जाए। मुअल्लक जो होता है वो सबब बनता है जब शर्त पाई जाए, उससे पहले वो सबब ही नहीं। जबकि इमाम शाफी हमला के नजदीक मुअल्लक सबब बनता है इंद तकल्लुम, हुक्म उसका मुअख्खर हो जाता है, और वो कब पाया जाएगा, जब शर्त पाई जाएगी
जी।
अब वही बयान कर रहे हैं, ले अन्न फी तालीकाती, इसलिए क्योंकि तालीकात के अंदर यसीरु तसर्रुफु ततलीकन इंद शर्त इंदना, कि जो तलाक वाला तसर्रुफ है ये ततलीक बनेगा, इंद शर्त जब शर्त पाई जाएगी, इंदना हमारे नजदीक। ये जो खामन ने कहा अंति तालिकुन सिनतैनी, ये तलाक का सबब बनेगा, ये मुअल्लक है, और मुअल्लक जो है वो सबब बनता है कब, जब शर्त पाई जाए, जब शर्त पाई जाए तो फिर मुअल्लक सबब बनता है, उससे पहले वो सबब नहीं। यही बयान कर रहे हैं, लिअन्न फी तालीकात यसीरु तसर्रुफु ततलीकन, इसलिए क्योंकि तालीकात के अंदर ये जो तसर्रुफ है ततलीक वाला, ये ततलीक बनता है, इंद शर्त शर्त के वक्त, इंदना हमारे नजदीक। व इदा कानत ततलीक मुअल्लकन बिल इताक अबिल इत्क यूजदु बादहू, अब देखिए ये ततलीक मुअल्लक है किसके साथ, इत्क या इताक के साथ
जी।
ततलीक मुअल्लक है भाई, पीछे इत्क का लफ्ज जिक्र था, चाहे इत्क ले लें चाहे इताक उससे माना ले लें, दोनों भाई जब मालिक इताक करेगा तो साथ ही इत्क भी आ जाएगा
जी।
तो चाहे आप इसको इताक के साथ मुअल्लक करार दे दें, चाहे इत्क के साथ मुअल्लक करार दे दें, तो जिस वक्त इत्क या इताक पाया जाएगा उस वक्त ततलीक पाई जाएगी
जी।
और तत्लीक के बाद फिर आगे तलाक आएगी, तो मालूम हुआ जो तलाक है वो इत्क के बाद आएगी, और इत्क के बाद तो तलाकें कितनी हो चुकी, तीन, तो आजादी के बाद ये दो तलाकें आ रही हैं, तो अभी भी एक तलाक बाकी है, लिहाजा खावंद रुजू कर सकता है
जी।
तो कहते हैं वह इदा कान तत्लीक मुअल्लकन बिल इताक अविल इत्क, और जब तत्लीक जो है वो मुअल्लक है इताक या इत्क के साथ, तो यूजदु बादहू, तो ये तत्लीक इनके बाद पाई जाएगी। सुम्म तलाक यूजदु बाद तत्लीक, फिर तत्लीक के बाद तलाक पाई जाएगी, क्योंकि तलाक क्या है, तत्लीक का असर है, तो वो उसके बाद पाई जाएगी। फयकूनु तलाक मुतअख्खिरन अनिल इत्क, तो तलाक जो है वो मुअख्खर हो जाएगी आजादी से। फयुसादिफुहा, तो ये तलाक मुलाकात करेगी उस औरत से, वही हुर्रतुन, इस हाल में कि यह आजाद होगी, यानी तलाक से मुलाकात करेगी, यानी इस पर वाकई होगी, वही हुर्रतुन, इस हाल में कि औरत आजाद हो चुकी है। फला तहरुमु हुरमतन गलीजतन बिस्सिनतैनी, तो अब ये आजाद औरत दो तलाकों से हुरमत गलीजा के साथ हराम नहीं होगी। हुरमत गलीजा के साथ ये हराम नहीं होगी, अगर यह बांदी होती तो बांदी की तो थी ही दो तलाकें, फिर तो हुर्मत गलीजा आ जाती, फिर तो खावन के लिए रुजू की कोई सूरत ना रहती, लेकिन तलाक तो इस पर उस वक्त वाकई हुई है जब यह आजाद हो चुकी है। तो अब इसकी तलाकें तीन हो गई थी और साथ ही दो वाकई हो गई, तो अब भी एक तलाक बाकी है, खावन रुजू कर सकता है। ये माना है फला तहरुमु हुर्मतन गलीजतन बिसिनतैनी, तो ये औरत हुर्मत गलीजा के साथ हराम नहीं होगी दो तलाकों से। या बका शय उन, एक चीज बाकी रह गई, वह हुआ अन्नक, जी साहिब हिदाया फरमा रहे हैं ऊपर माआ लफ्ज आया था, खावन के कलाम में माआ आया था, अंति तालिकुन सिनतैनी माआत की मौला की या की, तो खावन ने तो माआ जिक्र किया है और मा का माना तो है साथ साथ, और यह तो तकाजा क्या करता है कि इतक के साथ ही, इताक के साथ ही क्या होनी चाहिए, ततलेक होनी चाहिए, तवज्जो है। तो उसका भी जवाब दे रहे हैं कि कभी मा का लफ्ज बाद के माना में भी इस्तेमाल होता है, कभी मा का लफ्ज बाद के माना में भी इस्तेमाल होता है, और यहां भी ऐसा ही है। या बकाशय उन, एक चीज बाकी रह गई, वह हुआ और वो ये कि अन्न कलिमत मा लिल किरानी, के कलिमा मा जो है किरान, किरान का माना मिलाना, अन्न कलिमत मा लिल किरानी, के कलिमा मा जो है वो तो किरान के लिए आता है, किरान का माना भी साथ मिलाना, तो मा का माना भी साथ है। तो वह हुआ अन्न कलिमत मालिल किरानी, के कलिमा मा जो है वो तो किरान के लिए है, साथ मिलाने के लिए है। कुल ना, हम कहते हैं, कद यूज करू लिता आखूरी, के कभी कभार कलिमा मा को ताखुर के लिए भी जिक्र किया जाता है, मुअखर होने के लिए भी जिक्र किया जाता है, यानी बादू के माना में, कमा फी कौल ही ताला, जैसे कि अल्लाह ताला के इस कौल में है, फ इन माल उसरी युसरन, इन माल उसरी युसरा, फइन माल उसरी युसरन, उसर कहते हैं तंगदस्ती को, तंगी को, और युसर कहते हैं आसानी और सहूलत को और खुशहाली को। तो कुरान में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, फइन माल उसरी युसरा, यकीनन उसर के साथ युसर है। अब हालांकि एक वक्त में एक हालत हो सकती है, अगर उसर है तो युसर नहीं है, और अगर युसर है तो उसर नहीं है, ये दोनों तो एक दूसरे के मुखालिफ हैं। उसर का क्या माना, तंगी, और युसर का क्या माना, आसानी। तो एक वक्त में एक चीज हो सकती है, तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहां मा माने बादू के है, कि उसर के बाद युसर है, भाई हर उसर के बाद युसर है, क्योंकि दोनों एक जमाने में तो इकट्ठे नहीं हो सकते, तो लेकिन हर तंगी के बाद आसानी है। तो यहां मा किस माना में है, बादू के माना में। सवाल, भाई जब बादू के माना में है तो फिर इस मा के जिक्र करने का क्या फायदा कि मा को जिक्र किया गया, तो जवाब ये, तो जवाब ये, चूंकि उसर के बाद युसर का होना यकीनी है और युसर जो है उसर से जुदा नहीं हो सकता, उसके साथ ही रहेगा, इसलिए यहां मा के साथ जिक्र किया गया इसको, भाई। तो कहते हैं कमा फी कौली ताला, जैसे कि अल्लाह ताला के इस कौल में है, फई नमाल उसरी युसरा, इन नमाल उसरी युसरा, फयुहमल अलैही, लिहाजा इसको इसी माना पर यानी ताखुर वाले माना पर महमूल किया जाएगा, भी दलील माजा करना, उस दलील की वजह से जो हमने जिक्र कर दी, मिन माना शर्त, यानी शर्त के माना की वजह से, शर्त क्या होती है, शर्त मुकद्दम होती है और मशरूत मुअख्खर होता है, और हमने भी बता दिया कि यहां शर्त वाला माना है, इसलिए क्योंकि शर्त उसको कहते हैं जिसका तकल्लुम के वक्त जिसका वजूद नहीं लेकिन इसके होने का इम्कान है, और नीज उसके साथ हुक्म का ताल्लुक हो, भाई। और यहां पर भी आजादी इसी तरह है, खावंद के तकल्लुम के वक्त तो आजादी नहीं लेकिन उसके होने का इम्कान है, और नीज उसके साथ हुक्म का भी ताल्लुक है कि वो आजादी होगी तो फिर ही तलाक भी वाकई होगी, भाई। बात समझ में आ गए, ये माना है, फयुहमल अलैही, लिहाजा इस मा को ताखुर के माना पर महमूल किया जाएगा, भी दलील माजा करना, उस दलील की वजह से जो हमने जिक्र कर दी, मिन माना शर्ती, यानी शर्त का माना, यानी वो जो शर्त का माना था उसकी वजह से। बात समझ में आ गई, साहिब हिदायत ने बतलाया कि यहां इतक का लफ्ज जिक्र है मतन में, लेकिन यह इतक अपने हकीकी माना में भी हो सकता है और यह इताक के माना में भी हो सकता है। तो अगर इतक बमाने इताक के हुआ तो यह इसका मजाजी माना है, और अगर इतक को अपने ही माना में रखते हैं तो फिर इताक यहां मुकद्दर निकाल लेंगे। अंति तालिकुन सिंतैनी मा इतकिन बी इताक मौला की इया की। तो यहां इताक होना जरूरी है, मैंने बताया था इसलिए क्योंकि इताक यह है आका का फेल, आका आजाद करेगा तो औरत आजाद होगी, तो इताक है इल्लत और इत्क उसका मालूल है, उसका असर है, उसका हुक्म है। तो जब मालिक इताक करेगा तो इतक आ जाएगा, तो लिहाजा या तो इस इतक को ही इताक के माना में लेना पड़ेगा या यहां पर इताक को मुकद्दर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इताक के बगैर इतक नहीं हो सकता। तो लिहाजा चाहे आप इतक को अपने माना में रखें चाहे इसको आप इताक के माना में ले लें, दोनों सूरतों में ये जो है ये शर्त बनेगी, ये शर्त बनेगी अंति तालिकुन के लिए। क्या बनेगी? शर्त बनेगी अंति तालिकुन के लिए, यानी वो जो ततलीक है। अंति तालिकुन में खावंद क्या कर रहा है? तलाक दे रहा है, तो ये ततलीक है। तो मालूम हुआ ततलीक के लिए इताक जो है वो शर्त है भाई। और शर्त कैसे है? तो साहिब हिदाया ने बतलाया था कि शर्त उसे कहते हैं जो तकल्लुम के वक्त मादूम हो और उसके होने का इम्कान हो, उसके होने का इम्कान हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो। तो शर्त उसे कहते हैं जो तकल्लुम के वक्त मादूम है और उसके होने का इम्कान है और नीस हुक्म का उसके साथ ताल्लुक है। जैसे यहां पर भी जब खावन ने अंति तालिकुन सिंतैनी माइत की मौला की इया की कहा तो अभी औरत आजाद नहीं, तो अभी इताक नहीं, लेकिन इस इताक के होने का इम्कान है और नीज इसके साथ हुक्म का भी ताल्लुक है भाई कि इताक होगा तो तलाक वाकई हो जाएगी भाई। तो मालूम हुआ ये शर्त है, और जब ये शर्त है तो फिर जब ये शर्त पाई जाएगी तो फिर वो ततलीक भी हो जाएगी भाई। अलबत्ता यहां पर फिर इश्काल होता है कि यहां तो मा का लफ्ज जिक्र है, किसका क्या लफ्ज जिक्र है? मा का लफ्ज जिक्र है और मा का माना होता है साथ भाई। मा का क्या माना है? साथ। मालूम हुआ आजादी के साथ अंति तालिकुन आना चाहिए, आजादी के साथ अंति तालिकुन आना चाहिए, हालांकि शर्त तो मुकद्दम होती है और मशरूत मुअख्खर होता है। खावन ने बीवी से कहा अंति तालिकुन इन दखलती दारा, तुझे तलाक है अगर तू उस घर में गई, तो जब घर में जाएगी फिर तलाक होगी। मालूम हुआ शर्त पहले होती है और मशरूत बाद में, लेकिन यहां तो मा का लफ्ज आ रहा है तो उसका भी जवाब दिया साहिब हिदाया ने कि मा कभी कभार तअखुर के लिए भी अरबी जुबान में इस्तेमाल हो जाता है, यानी बादू के माना में भी इस्तेमाल हो जाता है, और यहां पर भी जब जब आगे इताक जो है वो शर्त है तो लिहाजा यहां पर मा को बादू के माना में ले लेंगे, क्योंकि शर्त मुकदम होती है और मशरूत मुअखर होता है, इसलिए मा को बादू के माना में ले लेंगे। तो लिहाजा इताक के बाद जो है वो ततलीक वाकई होगी भाई, और जब इताक हो चुका है उसके बाद ततलीक वाकई हो रही है तो आजाद औरत पर तलाक वाकई हो रही है, और इसकी तलाकें पहले दो थीं लेकिन अब क्या हो चुकी? तीन, और अब वो दो तलाकें वाकई हुई तो अभी भी एक तलाक बाकी है, खावंद रुजू कर सकता है भाई। बात समझ में आ गई? चलिए बस भाई, हाज़ा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।